नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में उस दौर की गहरी पड़ताल करने वाले हैं जब पूरी दुनिया एक वैचारिक मंथन से गुजर रही थी।
हम बात कर रहे हैं मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई की,
यानी ईसा से लगभग 500-600 साल पहले के समय की।
ये वो दौर था जब गंगा के मैदानों से लेकर यूनान के शहरों तक नए सवाल पूछे जा रहे थे। जीवन का अर्थ क्या है, ब्रह्मांड कैसे चलता है
और समाज को कैसे जीना चाहिए। हमारे पास जो स्रोत है वो उस दौर के चिंतकों, उनकी मान्यताओं और उनकी द्वारा छोड़ी गई इमारतों की कहानी कहते हैं।
हाँ, और हमारा मकसद है इन कहानियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना,
ये समझने की कोशिश करना कि कैसे उस एक दौर ने आने वाली सदियों की सोच, धर्म और कला की नींव रखी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं।
जरूर।
तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है, सवाल है द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई इज कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन द कोर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मतलब इस दौर को विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है? ऐसा क्या खास हो रहा था इस समय?
देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव किसी एक जगह पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लगभग एक साथ हो रहे थे।
अच्छा।
हाँ, इसके चार मुख्य आधार हैं। पहला और सबसे बड़ा था इमर्जेंस ऑफ न्यू थिंकर्स, नए विचारकों का उदय।
जैसे कि
भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर थे तो चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथुस्टर और यूनान में सुकरात और प्लेटो जैसे महान चिंतक।
ये तो कमाल है। मतलब पूरी दुनिया में एक ही समय पर इंसानियत अस्तित्व और ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों को सुलझाने में लगी थी।
बिल्कुल, ये सब एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे थे, फिर भी इनके सवालों में एक तरह की समानता थी। ये सभी पारंपरिक मान्यताओं पर सवाल उठा रहे थे।
और इसी से शायद दूसरा बदलाव जुड़ा होगा।
हाँ बिल्कुल, दूसरा बड़ा बदलाव था राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स।
भारत के संदर्भ में देखें तो बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ और इन नई परंपराओं ने उस समय की स्थापित वैदिक परंपरा को चुनौती दी।
सीधी चुनौती दी, खासकर यज्ञों की प्रासंगिकता और वेदों के अधिकार पर सवाल उठाए गए।
ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी, मतलब उस समय के पूरे सामाजिक और धार्मिक ढांचे पर सवाल उठाना।
हाँ, लेकिन समाज भी बदल रहा था और यही तीसरा कारण सामने आता है, ग्रोथ ऑफ स्टेट्स एंड सिटीज,
राज्यों और शहरों का विकास।
ये वो समय था जब लोहे के इस्तेमाल से खेती में क्रांति आई, अनाज जरूरत से ज्यादा पैदा होने लगा और व्यापार बढ़ा,
और इसी वजह से गंगा घाटी के आसपास बड़े बड़े शहर और राज्य बसने लगे।
जी, जिन्हें हम 16 महाजनपदास के नाम से जानते हैं। मगध, कोसल, वत्स जैसे नाम इसी दौर के हैं।
तो मतलब शहरों के आने से समाज भी बदल गया।
हाँ, और यही हमारा चौथा बिंदु है, चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। शहरों में एक नया व्यापारी वर्ग जिसे पाली ग्रंथों में गहापति कहा गया है, वो बहुत शक्तिशाली हो रहा था।
अच्छा, और इन लोगों को ये नए विचार ज्यादा पसंद आए होंगे।
बिल्कुल, इन लोगों को बौद्ध और जैन धर्म के विचार ज्यादा आकर्षक लगे क्योंकि वो जन्म आधारित भेदभाव को नहीं मानते थे। तो आप देख सकती हैं कि ये सारे बदलाव, नए विचारक, नए धर्म, नए शहर और नया समाज, सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे।
अब समझ आया कि इसे टर्निंग पॉइंट क्यों कहते हैं। ये सिर्फ कुछ नए विचारों का आना नहीं था बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज, हर स्तर पर एक पुरानी दुनिया खत्म हो रही थी और एक नई दुनिया जन्म ले रही थी।
ये सवाल 3 मार्क्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसके 4 पॉइंट्स याद रखें, न्यू थिंकर्स, न्यू रिलीजन्स, ग्रोथ ऑफ स्टेट्स और सोशो इकोनॉमिक चेंज।
समय है मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई। भारत में विचारक हैं बुद्धा और महावीरा, और दुनिया में सोक्रेट्स, प्लेटो, कन्फ्यूशियस। राजनीतिक विकास है 16 महाजनपदास का उदय।
इन्हीं नए विचारकों में से महात्मा बुद्ध का प्रभाव सबसे गहरा और दूर तक फैला। तो हमारा अगला सवाल उन्हीं की शिक्षाओं पर है, एक्सप्लेन द टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्धा। या जैसा कि एक प्रसिद्ध कथन है, बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ्स एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। इस कथन के संदर्भ में बुद्ध की शिक्षाओं को कैसे समझा जा सकता है?
बुद्ध की शिक्षाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती उनकी व्यवहारिकता में है। वो किसी ईश्वर या क्या कहते हैं, अलौकिक शक्ति की बात नहीं करते बल्कि इंसान की अपनी स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
और उनकी पूरी शिक्षा को 4 नोबल ट्रुथ्स यानी 4 आर्य सत्यों में समेटा जा सकता है ना?
हाँ बिल्कुल।
ये दुनिया दुखों से भरी है, ये तो पहला सत्य है। क्या ये थोड़ा निराशावादी नहीं लगता?
पहली नज़र में लग सकता है, लेकिन ये निराशावाद नहीं, यथार्थवाद है। ये एक डॉक्टर के निदान जैसा है। पहला सत्य है कि संसार में दुख है, क्योंकि सब कुछ अस्थाई है।
ठीक है,
लेकिन बुद्ध यही नहीं रोकते। दूसरा सत्य उस दुख का कारण बताता है, हमारी तृष्णा, हमारी इच्छाएं।
और तीसरा सत्य,
द एट फोल्ड पाथ, यानी अष्टांगिक मार्ग,
यानी समस्या का निदान, कारण की खोज, इलाज की संभावना और फिर इलाज का तरीका। ये तो वाकई एक वैज्ञानिक विधि जैसा लगता है।
बहुत नई सोच थी उस समय। और इसी से जुड़ा उनका एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, द मिडल पाथ, यानी मध्यम मार्ग।
मतलब ना तो कठोर तपस्या और ना ही बहुत ज्यादा भोग विलास।
सही, उन्होंने कहा दोनों रास्ते गलत हैं, सही रास्ता बीच का है।
और अपने दीपक स्वयं बनो वाली बात, इसका क्या मतलब है?
यही बुद्ध की शिक्षाओं का सार छिपा है। ये उनकी सबसे क्रांतिकारी शिक्षा है, इंडिविजुअल एजेंसी।
इंडिविजुअल एजेंसी,
हाँ। बुद्ध का कहना था कि मुक्ति या निबाना पाने के लिए किसी पुजारी, किसी यज्ञ या किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को अपने सही कर्म कम्मा से अपना रास्ता खुद बनाना होगा।
कोई और आपको मुक्त नहीं कर सकता।
बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने कहा बी लैम्प्स अनटू योरसेल्व्स, आपकी रोशनी आपके अंदर है।
ये तो बहुत सशक्त बनाने वाला विचार है। ये व्यक्ति को हर तरह की बाहरी निर्भरता से आजाद करके अपनी मुक्ति की जिम्मेदारी खुद उसके हाथों में देता है।
सही बात है। और इसी सोच के तहत उन्होंने रिजेक्शन ऑफ सोशल हायरार्की की बात की। उन्होंने जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा या नीचा मानने से साफ इनकार कर दिया।
और उन्होंने आम लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए आम लोगों की भाषा प्राकृत का इस्तेमाल किया।
हाँ, जानबूझकर संस्कृत को छोड़कर प्राकृत को चुना, ताकि ज्ञान कुछ विद्वानों तक सीमित न रह जाए।
तो कुल मिलाकर बुद्ध की शिक्षाएं तार्किक, व्यावहारिक और सबके लिए सुलभ थी, शायद इसीलिए वो इतनी तेजी से फैली।
ये 3 या 8 मार्क्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 Noble Truths, द मिडल पाथ और इंडिविजुअल एजेंसी, ये की पॉइंट्स हैं।
कुछ खास शब्द हैं, अनिका, अनाता, दुखा, कम्मा और निब्बाना, और भाषा थी प्राकृत।
तो बुद्ध के विचार व्यक्ति को अपनी मुक्ति का रास्ता दिखा रहे थे, लेकिन इन विचारों को सिर्फ शब्दों में कैसे बांधा जा सकता था? मतलब उन्हें स्थायी बनाने के लिए कला का सहारा लिया गया होगा।
बिल्कुल, और यहीं से सांची जैसे अद्भुत स्तूपों की कहानी शुरू होती है। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं है, बल्कि ये विश्वास को कला में ढालने की कोशिश है।
तो हमारा अगला सवाल इसी पर है। द स्तूपा एट सांची इज अमंग द बेस्ट प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द अर्लिएस्ट टाइम्स। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, सांची का स्तूप इतना खास क्यों है?
पहले तो ये जानना जरूरी है कि सांची आज बचा कैसे रहा। इसका श्रेय भोपाल की बेगमों शाहजहां बेगम और उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम को जाता है।
अच्छा, उन्होंने इसके संरक्षण में मदद की।
हाँ, उन्होंने 19वीं सदी में फ्रांसीसी और अंग्रेजों को इसे ले जाने से रोका।
अब अगर इसकी बनावट को देखें तो इसके कुछ मुख्य हिस्से हैं।
हाँ, इसकी बनावट के बारे में बताइए। सबसे मुख्य हिस्सा है एक विशाल अर्ध गोलाकार टीला, जिसे अंडा कहते हैं। इसके ऊपर एक बालकनी जैसी संरचना है, हर्मिका, जिसे देवताओं का निवास माना जाता था।
और उसके ऊपर वो एक मस्तूल जैसा होता है।
हाँ, हर्मिका के बीच से एक मस्तूल निकलता है, जिसे यष्टि कहते हैं। और पूरे स्तूप के चारों ओर एक पत्थर की बाढ़, वेदिका होती थी।
और इसके वो शानदार नक्काशी वाले दरवाजे, जिन्हें तोरण कहते हैं, उनकी क्या कहानी है?
वो चार तोरण या तोरनाज ही सांची की असली आत्मा है। यहीं पर इसकी स्कल्पचरल फीचर्स यानी मूर्ति कला की विशेषताएं दिखती हैं। और कमाल की बात यह है कि इन पर बौद्ध और गैर बौद्ध दोनों तरह की कला का संगम है।
एक मिनट, आप कह रहे हैं कि सांची में बुद्ध की कोई मूर्ति ही नहीं है, सिर्फ प्रतीक है?
हाँ, शुरुआती बौद्ध कला में बुद्ध को मानव रूप में दिखाना शायद उनके महापरिनिर्वाण के बाद उचित नहीं समझा जाता था।
तो फिर उन्हें कैसे दर्शाया गया?
कलाकारों ने सिंबल्स ऑफ द बुद्धा का इस्तेमाल किया, जैसे खाली सिंहासन, एम्प्टी सीट, उनके ध्यान को दिखाता है, धर्म का पहिया, उनके पहले उपदेश को, और स्तूप स्वयं उनके महापरिनिर्वाण का प्रतीक है।
ये तो हुए बौद्ध तत्व। और गैर बौद्ध तत्व कौन से थे जिनकी आप बात कर रहे थे?
यहीं सांची की कला और भी दिलचस्प हो जाती है। तोरणों पर आपको एक बहुत सुंदर स्त्री की मूर्ति मिलेगी, जो पेड़ की डाली पकड़कर झूल रही है। इसे शलाभंजिका कहते हैं।
इसका बौद्ध धर्म से क्या संबंध है?
सीधा संबंध नहीं था, ये एक प्राचीन लोक मान्यता में सौभाग्य का प्रतीक थी। इसी तरह आपको गजालक्ष्मी की मूर्ति मिलेगी, और हाथी, शेर, बंदर और नागों की आकृतियां भी हैं।
तो इसका मतलब बौद्ध धर्म ने आम लोगों में पहले से प्रचलित मान्यताओं और प्रतीकों को भी अपना लिया।
बिल्कुल, ये एक बहुत समझदारी भरा कदम था। इन परिचित प्रतीकों को देखकर आम लोगों को स्तूप अपना सा लगा, वो इससे आसानी से जुड़ पाए।
ये दिखाता है कि बौद्ध धर्म कितना लचीला था।
ये 8 मार्क्स के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है। स्ट्रक्चरल और स्कल्चरल फीचर्स दोनों को समझाना जरूरी है। बुद्धिस्ट और नॉन बुद्धिस्ट तत्वों का मिश्रण एक की पॉइंट है।
स्थान है सांची, संरक्षक है भोपाल की बेग में, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम। स्ट्रक्चरल पार्ट्स है अंडा, हर्मिका, याष्टी, तोरनाज। और की सिंबल्स है एम्प्टी सीट, व्हील, शालाभंजिका, गजालक्ष्मी।
तो एक तरफ बौद्ध और जैन धर्म जैसी नई परंपराएं स्थापित हो रही थीं, ऐसे में पुरानी वैदिक परंपरा का क्या हुआ? क्या वो खत्म हो गई?
नहीं, कोई भी परंपरा खत्म नहीं होती, वो अपना रूप बदल लेती है। वैदिक परंपरा ने भी ऐसा ही किया, और यहीं से हमारे आज के आखिरी सवाल का जवाब मिलता है।
एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुज्म, यानी पुराणिक हिंदू धर्म का विकास कैसे हुआ?
पुराणिक हिंदू धर्म का विकास उस जटिल और खर्चीली यज्ञ परंपरा से अलग हटकर हुआ। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि धर्म अब एक व्यक्तिगत रिश्ता बन रहा था।
कैसे?
ऑन स्पेसिफिक डीटीज, अब इंद्र, अग्नि जैसे वैदिक देवताओं की जगह विष्णु, शिव और देवी की उपासना प्रमुख हो गई।
और इसी में अवतार की अवधारणा भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई, खासकर विष्णु के साथ।
हाँ, द अवतारा कॉन्सेप्ट इस नए हिंदू धर्म का केंद्र बन गया। ये विश्वास कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु उसे बचाने के लिए अवतार लेते हैं, एक बहुत शक्तिशाली विचार था।
लेकिन ये नए विचार, ये कहानियां आम लोगों तक पहुंची कैसे? वेद तो सब लोग पढ़ नहीं सकते थे।
यहाँ पर द रोल ऑफ द पुराणास, यानी पुराणों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इसी दौर में पुराणों को सरल संस्कृत में लिखा गया
और उन्हें सबके सामने पढ़ा और सुनाया जाता था।
हाँ, जिसमें महिलाएं और शूद्र भी शामिल होते थे, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी।
और फिर इन देवी देवताओं के लिए घर यानी मंदिर भी बनने शुरू हुए होंगे।
सही पकड़ा। ग्रोथ ऑफ इमेज वर्शिप, मूर्ति पूजा और टेम्पल आर्किटेक्चर भी इसी दौर की देन है। मूर्ति पूजा लोकप्रिय होने के साथ साथ देवताओं के लिए पत्थर के भव्य मंदिर बनाने की परंपरा भी शुरू हुई।
तो इन सब बदलावों का सार क्या था? वो कौन सा एक धागा था जो इन सबको जोड़ता था?
वो धागा था डिवोशनलिज्म, भक्ति। भक्ति इस नई परंपरा में जान या यज्ञ से ज्यादा किसी एक ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण को मोक्ष का मार्ग बताया गया।
एक ऐसा रास्ता जो सबके लिए खुला था।
हाँ, चाहे वो किसी भी जाति या लिंग का हो। इसने धर्म को ज्यादा व्यक्तिगत, सुलभ और भावनात्मक बना दिया।
ये एक 8 मार्क का प्रश्न हो सकता है। वैदिक परंपरा से हटकर भक्ति, मूर्ति पूजा और अवतारवाद की ओर हुए बदलाव पर ध्यान दें।
पुराणों की भूमिका को समझाना बहुत जरूरी है।
मुख्य धाराएं हैं वैष्णविज्म और शैविज्म। मुख्य अवधारणाएं हैं अवतारा, भक्ति, मूर्ति पूजा और मुख्य ग्रंथ हैं पुराणास।
आज हमने इतिहास के एक ऐसे क्रांतिकारी दौर को समझा जहां नए विचारकों ने समाज को नई दिशा दी। हमने बुद्ध की तार्किक शिक्षाओं को जाना, सांची की बोलती हुई कला को देखा
और कैसे भक्ति ने हिंदू धर्म को एक नया रूप दिया, ये समझा।
हाँ,
आज की ये चर्चा हमें यही दिखाती है कि विचार और विश्वास कभी स्थिर नहीं होते, वे समय और लोगों की जरूरतों के साथ बदलते हैं और एक दूसरे से संवाद करते हैं,
एक दूसरे में घुलमिल जाते हैं।
बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि जिन प्रतीकों और कहानियों की हमने आज बात की, जैसे धर्म चक्र हो या अवतार की अवधारणा, वे आज भी हमारी संस्कृति और सोच में कितने गहरे बसे हुए हैं, कभी कभी तो अपने मूल धार्मिक संदर्भों से भी कहीं आगे निकलकर।
इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।